तो 6 नवंबर की बात है 2019 में, 2019 में, और लोकेशन है कैलकटा। एंड वहाँ पे एक काफ़ी एक बड़ी ऑफिस सी बिल्डिंग बनी हुई है। एंड वहाँ पे ना ऊपर से अचानक से जो नीचे लोग खड़े हुए रहते हैं वो नोटिस करते हैं कि ऊपर से पैसे की बरसात हो रही है। और वो ऊपर देखते हैं तो उनको कोई आदमी तो नहीं नज़र आता, लेकिन हाँ पता पड़ रहा है कि कोई आदमी है। और वो एक झाड़ू से किसी तरीके से माने पैसे निकाल निकाल के एक तरीके से झाड़ू लगा रहे हैं और पैसे पूरे गिर रहे हैं और वो ज़बरदस्ती फेंक रहा है। तो हलचल तो मची गई, खूब लोगों ने खूब पैसे उठाए वहाँ से, काफ़ी ज़्यादा पैसे वहाँ पे उस दिन वहाँ से फेंके गए थे। तो बाद में पता लगा कि वहाँ पे एक गवर्नमेंट की एजेंसी की रेड चल रही थी उस बिजनेस ऑफिस में, कोई डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू करके, कोई रेवेन्यू इंटेलिजेंस करके जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था उनकी रेड चल रही थी उस क्या कहते हैं ऑफिस वाली बिल्डिंग में। और कौन सी कंपनी थी वो? बेसिकली कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसका नाम उठा था काउ स्मगलिंग को लेकर। तो खैर काउ स्मगलिंग आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में वैसे भी है। आपने सुना है कि कोई अनुव्रता मंडल करके है जो कि वेस्ट बंगाल का है, पॉलिटिकली कनेक्टेड है, काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव भी है, एंड करेंटली इज इन जेल, केस चल रहा है उसके ऊपर काउ स्मगलिंग का। तो खैर हम देखेंगे इस एपिसोड में, हम डिस्कस करेंगे कि काउ स्मगलिंग कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, और जिस कंपनी पे रेड मारी गई थी। अनुव्रता मंडल जो है ना वो तो एक पॉलिटिकल फिगर है ऊपर से, पर जो एक्चुअल किंग पिन जो पूरा एक सिंडिकेट चला रहा था काउ स्मगलिंग था, जो कि लीडर था इंडिया में, वो माना जा रहा है एक आदमी है मोहम्मद एनामुल हक करके, वेस्ट बंगाल का ही है मोहम्मद एनामुल हक, और इसको एक किंग पिन माना गया है काउ स्मगलिंग का। तो देखते हैं कि इसने क्या किया, कैसे किया। फिलहाल तो ये भी जेल में है, इस रेड के बाद इसी की कंपनी थी, इसको जेल में पकड़ा गया, इसको रखा गया। बेसिकली ना काउ स्मगलिंग किसके बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। क्यों होती है? उसका रीज़न बहुत सिंपल है, डिमांड एंड सप्लाई का गैप है। बांग्लादेश में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है कैटल की, नॉट ओनली कि वहाँ पे बीफ कंज्यूम किया जाता है, बट ऑल्सो वहाँ पे जो जब भी काउ स्लॉटर होता है तो उनका काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स में भी, लेदर में और इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। तो उन सब इंडस्ट्रीज़ की भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है काउ और कैटल की और काफ्स की और ये सब। तो डिमांड एंड सप्लाई की इशू है। और इंडिया एंड बांग्लादेश का अगर देखें ना तो हम लोग का कुछ बॉर्डर 4000 किलोमीटर का है, जिसमें से 500-600 किलोमीटर शायद वेस्ट बंगाल में आता है। और ये जो वेस्ट बंगाल वाला जो बॉर्डर है ना वो पूरा रिवर से है, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिवर्स फ्लो करती है, तो बॉर्डर जो है वो काफ़ी रिवराइन एरियाज उसको बोला जाता है। तो वहाँ से क्या होता है, तो बेसिकली जो काउ की और कैटल की जो स्मगलिंग की जाती है वो यूजली स्टार्ट होती है कहीं बिहार झारखंड वाले एरियाज में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैटल की पॉपुलेशन है, और करते करते उनको वेस्ट बंगाल लाया जाता है स्मगलिंग वाले राउट से। इंटरनली तो फिर भी हो जाती है, फिर यहाँ से इनको वेस्ट बंगाल से जो है इनको बांग्लादेश के बॉर्डर पे ले जाया जाता है, पर्टिकुलरली मुर्शिदाबाद, मालदा, यहाँ सब पे कई एरियाज हैं। और वहाँ पे जैसे मैंने बताया वो ज़्यादातर बॉर्डर्स इस एरिया में जो हैं वो रिवर वाले हैं, तो वहाँ पे पोर्ट्स होते हैं जहाँ से कैटल को ले जाया जाता है। तो हर पोर्ट में ना जहाँ से ये क्या कहते हैं स्मगलिंग होती है, वहाँ पे जो एक पोर्ट का जो लीडर होता है उसको घाटियाल बोलते हैं। तो घाटियाल समझ लीजिए, घाटी का मतलब ऐसी पोर्ट होता है, तो उसको घाटियाल बोला जाता है। और कहा जाता है कि ये जो इनामुल हक था ये अपने पीक पे एक एक दिन में 5000 कैटल जो है यहाँ से स्मगल कर रहा था पर डे। और एक कैटल जो होती थी अगर, और कैटल में भी ना अलग अलग ब्रीड होती है जो माने कई एक्सपेंसिव मानी जाती हैं, जो ज़्यादा हेल्दी ब्रीड्स होती हैं, कई जो थोड़ी पतली होती हैं वो थोड़ी सी सस्ते में बिकती हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसका एवरेज सेलिंग पॉइंट, ये एक कैटल जो बड़ी वाली होती थी उसको बेचता था 50,000 रुपये में, और जो काफ होती थी उसको बेचता था 15,000 रुपये में। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना प्रॉफिट कमा रहा था पर डे, ये ऐसे 5,000 यहां से बेचता था। और होता क्या था कि क्या कहते हैं कैटल को वहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज में जो भी टाउन्स होते हैं, तो ये जो बॉर्डर टाउन्स होते हैं ना अगर यहाँ पे ऐसी स्मगलिंग एक्टिविटी, तो कहीं ना कहीं से पूरा गांव ही कहीं ना कहीं से इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ये अक्सर देखा गया है। तो यहाँ पे क्या होता था कि कई गांव वाले जो लोग होते थे वो कैटल को अपने यहाँ पे स्टोर करते थे रात को, और फिर कहा जाता है कि रात को कहीं ना कहीं से, अब वहाँ पे इंडिया में एक और चीज़ होती है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वहाँ पे लगी हुई है, तो इसके ऊपर मैं अभी आऊँगा, पर कि एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भी आदमी के ऊपर एक केस लगा है। बट होता यह था कि BSF भी मिली हुई रहती थी और BSF वहाँ से ग्रीन सिग्नल रात को अक्सर कहते थे कि रात को 10 बजे के बाद ग्रीन सिग्नल आता था, और फिर जो है घटियाल जो होता था वो ऑर्डर देता था, वहाँ पे काउ की जो कैटल होती थी उसकी काउंटिंग होती थी और फिर इनको वहाँ से निकाल के स्मगल कर दिया जाता था। तो ये पूरा था, ये बेसिकली एक यही वाला राउट माना जाता था। और जब वहाँ पे कैटल पहुँच जाती थी तो कहा जो FIR हुआ है इसके अगेंस्ट उसमें यह है कि पैसा इसको डायरेक्टली नहीं मिलता था कि अरे तुमने 50,000 के इतने बेचे हैं तो मैं इतना पैसा दे दूँ, ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे ना कुछ शेल कंपनीज खोल रखी थी बांग्लादेश में, तो वो अपने आप को दिखाती थी कि हम गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं और इसने यहाँ पे इंडिया में कोई और कंपनीज खोल रखी थी, तो आपस में दिखाते थे कि कुछ ट्रेड हो रहा है और वहीं से जो है पैसा एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग जिसे कहते हैं कि एक लेजिटिमेट बिजनेस के तौर पर पैसा बांग्लादेश से इंडिया आ जाता था इसके पास कि मैंने इसको कुछ गारमेंट एक्सपोर्ट्स के चक्कर में कुछ मैंने कपड़े भेजे थे तो वहां से मेरे को ये पैसा आया है। इस तरीके से ये लोग काम करते थे। पर इसमें एक नेचुरल क्वेश्चन उठता है कि BSF मिली हुई थी तो BSF का क्या रोल था इसमें। तो इसमें एक आदमी है सतीश करके, इसका नाम कुछ सतीश कुमार जो भी है, सतीश है, और ये कमांडेंट था 36 बटालियन ऑफ BSF का। और 2015 और 17 के बीच में जबकि भी ये ना इसको पोस्टिंग हुई थी इसकी मुर्शिदाबाद, ये कमांडेंट था तो इसके काफ़ी यूनिट्स जो थे ये वही इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे थे, मुर्शिदाबाद कुछ एरिया आता है, मालदा आता है, वहाँ पे ये लोग सारे पोस्टेड रहते थे और यहीं से मेजर स्मगलिंग होती थी। तो अब ये नहीं पता कि कैसे ये लोग कब मिले कहाँ से मिले, लेकिन इमानुल हक ने हाथ मिलाया सतीश के साथ और डील ये हुई कि हर कैटल पे माने अब एग्जैक्टली ये लोग उस वक्त कितना पैसा देते थे ये नहीं पता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर काफ़ी एक दिलचस्प बात जो सामने आई, तो BSF को भी नेचुरल सी बात है ना, दिखाना तो पड़ता होगा कि हाँ काउ स्मगलिंग हो रही है, हम कुछ तो काम कर रहे हैं। तो ये क्या करते थे, इन्होंने दिखाया है कि हमने उस पीरियड में कुछ 20,000 गाय पकड़ी, हर साल में दिखाते थे या हर 3-4 महीने में जो भी है। तो BSF जो अपना मेमो बनाता है ना तो उसमें दिखाता था कि हमने 20,000 गाय पकड़ी है जो स्मगल हो रही थी, हमने उनको बचाया है। और वो क्या करते थे, वो इमीडिएटली ना उसको विद इन 24 आवर्स जो है कस्टम्स के जो भी सबसे नियरेस्ट कस्टम्स ऑफिस होता था वही मुर्शिदाबाद के सामने ही कोई होता था, वहाँ पे जो है ये लोग 24 आवर्स के अंदर अंदर, गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं कि आप इसको ऑक्शन कर दीजिए, बट ये लोग क्या करते थे 24 आवर्स के अंदर अंदर ही ऑक्शन कर देते थे। और ऑक्शन में क्या होता था, पहली बात तो इन्होंने जो कैटल पकड़ी उसको पेपर पे दिखाते थे ये सारी लो ब्रीड की हैं, चाहे लो हो या हाई हो, तो यहाँ पे एक तरीके से लॉस हुआ क्योंकि जो 50,000 की है आप दिखा रहे हैं इसकी तो वैल्यू सिर्फ 20,000 की है। दूसरी बात, जब ऑक्शन होता था तो सिर्फ और सिर्फ ये जो इमानुल हक है सिर्फ इसके और इसके जो ग्रुप के आदमी होते थे सिर्फ इन्हीं को ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना अलाउड था और कोई पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता था। तो ये लोग जाते थे सस्ते में खरीद लेते थे, और कहा जाता है जो FIR में जो मेंशन किया गया है कि ऑक्शन में ये जितनी भी कैटल खरीदता था 2,000 रुपये जाते थे BSF को जो सतीश के थ्रू जाते थे, और 500 रुपये जाते थे कस्टम्स वालों को, और कस्टम्स वाले ना कुछ और भी लेते थे 10% ऑफ समथिंग, बट बेसिकली ये था 2,000 रुपये BSF जो ये ऑक्शन में बेचा जा रहा है, उसमें से जो स्मगलिंग हुई है उसका पैसे का कोई अकाउंट अभी मैंने कुछ FIR में मेंशन नहीं किया गया है कि कितना दिया जाता था कितना नहीं दिया जाता था, बट यहां पे 2,000 BSF को और 500 जो है कस्टम्स वालों को दे दिया जाता था। और ये ले जाके पेपर्स पे दिखाया जाता था कि भाई हमने तो तुरंत जो है कैटल को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, पर रियलिटी में होता यह था कि यही जो स्मगलर्स होते थे ये वापस इनको यहीं से एकदम सस्ते दामों में खरीद कर वापस जो है इनको स्मगल कर देते थे। तो इसको बोला जाता था रिसाइकलिंग। और एक और इसमें मेन बात यह है कि जब जो ये BSF मेमो बनाता था इसमें सिर्फ कैटल पकड़ी जाती थी, कभी कोई मेंशन नहीं था कि भैया कैटल अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो आपने कुछ व्हीकल्स पकड़े होंगे, आपने कुछ आदमी पकड़े होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये था, और नेचुरल सी बात है सतीश के ऊपर भी अब केस लग गया है, और जो बैंक अकाउंट्स में फिलहाल एफआईआर में मेंशन है कि उसको 12.5 करोड़ कुछ दिए गए थे 2 साल के अंदर अंदर, ये 2 साल था वहाँ पे, 15 से 17 के बीच में, और ये इतना क्लोज हो गया था इमैनुअल हक के साथ कि इसका अपना बेटा जो है इमैनुअल हक की किसी एक नई कंपनी में काम करता था, उसी में ही नौकरी करता था। तो फिलहाल जो है ये केस अभी भी चल रहा है कोर्ट में, अभी फिलहाल मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा इसको हाईलाइट किया है, तो तभी मैंने जाके थोड़ी सी रिसर्च की, तो बस बेसिकली वही है, सप्लाई एंड डिमांड की प्रॉब्लम है, बिहार और यहाँ से वेस्ट बंगाल से आता है, बॉर्डर पे आता है, वहाँ से बीएसएफ के साथ प्रॉपर सेटिंग होती है और वहीं से उनको भेज दिया जाता है, और कई बार उनकी रिसाइकिलिंग भी होती है जहाँ बीएसएफ कुछ को पकड़ लेती है या ज़बरदस्ती जो भी दिखाती है, सस्ते दामों में इन्हीं स्मगलर्स को ही दोबारा बेचा जाता है ऑक्शन में और वहीं से वो रिसाइकिल कर देते हैं। लेकिन जो भी जर्नलिस्ट ने जो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है ना, इन्होंने काफ़ी एक दिलचस्प बात निकाली कि जो इंटरनल स्मगलिंग होती है ना, जो झारखंड और बिहार से लेके जब बंगाल तक जाती है, जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के कि स्मगलिंग माने काउ प्रोटेक्शन वगैरह के हिसाब से, एंड नेचुरल सी बात है आपने कई केसेस भी सुने हैं कि कई मुस्लिम्स को पकड़ के माने कई बार मारा गया है, पीटा गया है, कई बार तो एक दो की डेथ भी हो गई है कि काउस को स्मगल करके ले जा रहे हैं। तो जर्नलिस्ट ने काफ़ी एक रिपोर्ट निकाली है कि अक्सर अब ये काम हिंदूज ही कर रहे हैं, माने इस पूरा इंटरनल जो स्मगलिंग का नेटवर्क है, क्योंकि मुस्लिम्स को तो डर लगता है, मुस्लिम्स चाहे नॉर्मल तरीके के लिए भी लेके जा रहे हो तो क्या भरोसा कोई भी रास्ते में रोक के पकड़ के मार दे, इसीलिए जो ये पूरा इंटरनल स्मगलिंग नेटवर्क है वो मैक्सिमम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द हिंदूस, इज व्हाट इज बीइंग सेड, इट इज देयर इन द न्यूज रिपोर्ट्स दैट हैव स्टार्टेड कमिंग आउट। तो खैर ये था काउ स्मगलिंग के ऊपर एक छोटी सी रिसर्च करके एपिसोड, अगर आगे कुछ आता है तो मैं इस एपिसोड को अपडेट कर दूंगा।